इसका मतलब ये है कि जब वाल्मीकि मुनि ने अपने रामायण की रचना की तो उस समय श्री राम की आयु करीब करीब 40 वर्ष की थी, लेकिन वाल्मीकि मुनि ने ब्रह्मा जी की कृपा से न केवल उन बातों को जान लिया जो कि हो चुकी थीं, परंतु आने वाले 11,000 वर्षों में भी जो होने वाला है वो भी वो जान पाए ब्रह्मा जी की कृपा से। राम राज के भीतर कैसे जीवन हुआ, लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, कैसे सोचते थे, वो सब कुछ जान पाए। राम राज में संक्षिप्त रूप में वर्णन तो हम सुन ही चुके हैं। आजकल भी हम देखते हैं कि लोग ऐसे ही राम राज की अवस्था को चाहते हैं समाज में लाने के लिए, परंतु दुर्भाग्य तो ये है कि लोग राम राज की अवस्था को चाहते हैं परंतु बिना श्री राम के, बिना श्री राम की भक्ति किए हुए जीवन की सुविधाओं को चाहते हैं, जीवन में सुख और समाज में शांति चाहते हैं, ये संभव नहीं है। अयोध्या में राम राज के समय ऐसे अनुकूल और बहुत सुखमय व्यवस्था इसलिए थी कि श्री राम वहां पर उपस्थित थे और उनके राज्य के हर एक व्यक्ति उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनका मान करते थे, और राम चेतना, भगवत चेतना हर एक हृदय में थी, इसलिए ऐसे भक्ति भावना के कारण राम राज्य संभव हुआ। तो यदि हमारे समाज में भी इस आधुनिक काल में यदि हम ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें भी भगवान श्री राम श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए हमारे जीवन का। जितना हम भगवान को हमारे जीवन से दूर हटाते जाएंगे, जितना भौतिकतावाद का आश्रय लेंगे, जितना भोगवाद का आश्रय लेंगे और प्रगति और उन्नति के नाम पे हम हमारे आध्यात्मिक संस्कृति को त्यागते जाएंगे, उस हद तक हमारे जीवन और भी कठिन होता जाएगा, हमारे समाज का पतन होता जाएगा, कोई अच्छी चीजें नहीं होने वाली हैं भविष्य में यदि हमने भगवान का आश्रय स्वीकार नहीं किया। तो भगवान श्री राम की लीलाओं से, वाल्मीकि रामायण से हमें सीख लेना चाहिए कि आदर्श समाज का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए। जो हमारे समाज के नेता हैं उनको बड़े ध्यान से वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत आदि को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए और इन सिद्धांतों के अनुसार समाज का व्यवस्थापन होना चाहिए। तो ये एक झलक मात्र है राम राज्य की। तो यदि हमारे जीवन में हमने श्री राम और श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाया तो भले हम सारे समाज को बदल ना पाए, कम से कम अपने जीवन को तो हम बदल पाएंगे, हमारे जीवन को तो हम सुखी कर पाएंगे, कम से कम हमारे पारिवारिक अवस्था में तो हम सुख को हम निमंत्रण दे पाएंगे। तो इस प्रकार से नारद मुनि जब चले गए, उधर वाल्मीकि मुनि सोच में पड़ गए और आगे चलते चलते वो सोच रहे थे श्री राम के बारे में कि अच्छा, ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके अंदर ये सारे सद्गुण संपन्न हैं। तो श्री राम का चिंतन मनन करते करते वो अपने शिष्यों के साथ में बैठे थे। फिर एक बार वाल्मीकि मुनि ने सोचा कि चलो अब तमसा नदी में स्नान करने का समय आ गया है, तो अपने शिष्य भरद्वाज को साथ में लेकर वो तमसा नदी के तट पे गए, एक उपयुक्त स्थान ढूंढ निकाला जहां कीचड़ नहीं था, जहां नदी में नीचे उतरने के लिए सुविधाजनक स्थान था, और फिर तमसा नदी के पवित्र शीतल जल को देखकर भरद्वाज से कहने लगे कि देखो भरद्वाज, ये नदी का जल कितना शीतल है, कितना शांत है, जैसे कि एक सत्पुरुष का मन। जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया होता है, उसका मन सदैव शांत रहता है, वो ठंडे दिमाग का रहता है आदमी। परंतु जब हम भौतिकतावाद का आश्रय लेते हैं, भगवान को त्यागते हैं, तो सदैव हमारा मन बहुत विचलित रहता है। जैसे कि प्रह्लाद महाराज भागवत में कहते हैं, सदा समुद्विग्न धियात असत ग्रहात, कि जब हम सत जो कि भगवान हैं उनको त्याग कर असत को ग्रहण करते हैं, तो हमारा मन सदा उद्विग्न रहता है, सदा विचलित रहता है, हम कभी भी शांत नहीं रह सकते हैं। तो जो व्यक्ति मन की शांति चाहता है, उसे भगवान के शरण ग्रहण करके अपने इंद्रियों को और मन को और बुद्धि को भगवान में केंद्रित करना चाहिए। तो वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य से कहने लगे कि आओ हम यहां स्नान कर लेते हैं। और स्नान करने के पश्चात वाल्मीकि मुनि बाहर निकल आए बड़े प्रसन्न चित्त से। जो वातावरण था, जो इतना रमणीय था, प्रकृति का सौंदर्य अपार था, ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर वाल्मीकि मुनि का मन और भी प्रसन्न होते जा रहा था। उस समय उनकी दृष्टि दो ऐसे पक्षियों के ऊपर गई जो कि एक सामने के वृक्ष के ऊपर एक शाखा पर बैठे हुए थे। ये क्रौंच पक्षी थे और ये दोनों पक्षी साथ में थे, पुरुष और स्त्री दोनों, और कूज रहे थे बड़े मधुर ढंग से, एक दूसरे का संग कर रहे थे। और उस समय देखते देखते वाल्मीकि मुनि हैरान हो गए कि अचानक पास में एक शिकारी आया जिसका स्वरूप बड़ा क्रूर था, और उसने तीर चलाई और उन दो क्रौंच पक्षियों में से जो पुरुष था उसकी हत्या कर दी। और जैसे ही उस पुरुष क्रौंच पक्षी को तीर लगी, वो गिर पड़ा नीचे, खून से गिर गया, खून गिर पड़ा वहां पर। और ये देखकर जो महिला पक्षी थी, क्रौंच पक्षी, वो रोने लग गई। उधर वाल्मीकि मुनि का हृदय टूट गया, अचानक उनके हृदय पे इतना धक्का पड़ गया, इतना शोक उनको लगा कि स्वाभाविक रूप से न चाहते हुए, न सोचते हुए, न रचना करते हुए एक श्लोक उनके मुख से निकल आया। ये श्लोक सारे रामायण का मूल है, बीज है। और उन्हें भी पता नहीं चला कि किस प्रकार से ये श्लोक मेरे मुख से निकला। वाल्मीकि मुनि कहने लगे, मानिषात् प्रतिष्ठां त्वं अगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। उन्होंने एक प्रकार का शाप दिया उस शिकारी को कि हे निषाद, मैं तुम्हें यह शाप देता हूं कि लंबे समय तक तुम मन की शांति का अनुभव नहीं करोगे। मैं तुम्हें यह शाप देता हूं कि तुम्हारी जीवन की अवधि ज्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि तुमने इन दो पंछियों को जो कि आपस में अपने प्रेम का खेल खेल रहे थे, उनके खेल को रोककर एक पंछी को इतनी क्रूरता से मार डाला। और जैसे ही वाल्मीकि मुनि के मुखारविंद से ये शब्द निकले, तो वाल्मीकि मुनि बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, ये मेरे मुख से क्या निकल पड़ा, मैंने क्या कह दिया, ये शब्द कैसे मेरे मुख से आए, मैंने तो बैठकर रचना तो नहीं की इनकी, ये शब्द तो यूं ही निकल आए मेरे मन मेरे मुख से। फिर अपने शिष्य भरद्वाज से कहने लगे कि देखो भरद्वाज, ये कौन से शब्द मेरे मुख से निकल आए। और चार पाद के हैं ये, और हर एक पाद में अक्षर आठ हैं, ऐसे 32 अक्षर वाला ये एक पंक्ति निकल आई मेरे मुख से। मेरे शोक से ये श्लोक उत्पन्न हुआ। तो ऐसे ही आगे चल के जो भी कविताएं होंगी वो इसी आधार पर होंगी। और ये आदि कवि है, कविता है, और इसलिए इसे श्लोक कहा जाएगा। तो पहले श्लोक की रचना वाल्मीकि मुनि ने की, इसलिए वाल्मीकि मुनि को आदि कवि कहते हैं और वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहते हैं। इस छंद को अनुष्टुप छंद कहते हैं, जिसके हर एक पाद में, जिसके चार पाद होते हैं और हर एक पाद में आठ अक्षर होते हैं, इसे अनुष्टुप छंद की शुरुआत हुई। वाल्मीकि मुनि सोच में पड़ गए, हैरान भी हो गए। वाल्मीकि मुनि का मन विचलित सा हो गया। और उधर भरद्वाज, जो कि वाल्मीकि मुनि जी के शिष्य थे, उन्होंने तुरंत इस श्लोक को कंठस्थ कर दिया, ये जो कि शोक से श्लोक उत्पन्न हुआ। जब वाल्मीकि मुनि ने देखा कि भरद्वाज ने कंठस्थ कर लिया है इस श्लोक को, तो वो बड़े प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि मैं कैसे विचलित हो गया। महर्षि वाल्मीकि मुनि के विचलित होने के अनेक कारण थे। एक कारण ये था कि उनका हृदय दुखी हो चुका था कि इस शिकारी ने कितना क्रूर कार्य किया है, इस बेचारे पक्षी की हत्या कर ली। अब ये पक्षी एक है जो अकेली पड़ गई है, और ये शिकारी ने ऐसे क्यों किया। जो संत होते हैं उनके हृदय में करुणा की भावना होती है, वो अन्यों के दुख को सहन नहीं कर पाते हैं, भले वो पशु क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, कीड़े क्यों ना हो, मनुष्य क्यों ना हो। इसलिए ऐसे महान संतों को पर दुख दुखी कहते हैं, जो अन्यों के दुख से बहुत दुखी हो जाते हैं। ये एक सच्चे संत के लक्षण है। जो व्यक्ति अन्यों के दुख में सुख लेता है, जो अन्यों के सुख में दुखी होता है, वो संत नहीं कहला सकता। सच्चे संत तो वो होते हैं जो दुनिया के दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। सच्चे संतों के लिए अपने कोई दुख का विचार नहीं होता है, वो अपने लिए तरह तरह के दुख और कष्ट सहन करने के लिए तैयार होते हैं। अन्यों की भलाई करने में यदि उनको कोई कष्ट का सामना करना पड़े तो वो तैयार होते हैं, परंतु अन्यों का दुख जब देखते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। तो इस घटना से हम वाल्मीकि मुनि के चरित्र को जान सकते हैं कि वो कितने बड़े संत थे, उनका हृदय कितना कोमल था। और देखिए कि उस समय की संस्कृति और सभ्यता कितनी ऊंची थी कि एक पक्षी के मारे जाने पर भी इतना दुख हुआ करता था। आजकल हम देखते हैं पक्षियों की बात तो दूर है, पशुओं की हत्या तो बड़े पैमाने पे चल रहा है। आजकल शाकाहारी लोगों की संख्या तो कम होती जा रही है, कत्ल खाने खुले जा रहे हैं सब जगह, अधिक से अधिक आधुनिकता के नाम पर, उन्नति और प्रगति के नाम पर लोग मांसाहारी बनने जा रहे हैं। अच्छे अच्छे कुल के लोग भी आजकल घर में मांस आदि खाते हैं, बाहर होटलों में जाते हैं मांस खाने के लिए, कोई विचार नहीं करते हैं कि हम तो हमारे जिह्वा के संतुष्टि के लिए कोई चीज खा रहे हैं, परंतु इस स्वाद के पीछे कितने प्राणियों को कितना कष्ट पहुंचा होगा, किसी ने तो कत्ल की होगी। यदि कोई व्यक्ति कहता है मैंने तो कत्ल नहीं की, परंतु आपके लिए किसी दूसरे व्यक्ति ने तो कत्ल किया है, इसलिए आप भी उस कत्ल के लिए इतने ही जिम्मेदार रहेंगे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति पशु की हत्या करता है, जो व्यक्ति पशु को पकाता है या पशु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है कटवाने के लिए या काटने के बाद में, जो व्यक्ति रसोई करता है, जो व्यक्ति खाता है, वो सब गुनहगार हैं, सब को दंडित होना है भगवान के कानून में। तो जितना आजकल आधुनिकता पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे हृदय में करुणा दया की भावना कम होती जाती है। हम लोग आधुनिकता के नाम पर क्रूर होते जा रहे हैं। हम बिल्कुल विचार नहीं कर रहे हैं कि बेचारे मासूम पशुओं की हत्या कितने बड़े पैमाने पर हो रही है। और अन्य पशुओं की बात तो दूर है, गोमाता या गाय की हत्या कितने जगह हो रही है। और जब गोहत्या बंद किया गया कर्नाटक देश में, तो इतने लोगों ने इतना विरोध किया कि गाय की हत्या रुकवाना नहीं चाहिए, गाय की हत्या जारी रखनी चाहिए। कैसा समाज है, कितना अंतर है वाल्मीकि जी के समय में, वाल्मीकि जी के चित्त में और आजकल हम सब के चेतना में, हमारे समय में क्या विडंबना है, कितना दुर्भाग्य है। और यहां हम लोग समाज में देख रहे हैं कि प्रतिष्ठित लोग, सभी लोग ऐसे बुरे कार्यों में लगे हुए हैं। कोई विचार नहीं करता कि हमारे कार्यों के द्वारा अन्यों को कितना कष्ट पहुंच रहा हो। परंतु वाल्मीकि मुनि ऐसे नहीं थे, उनके हृदय में बहुत दुख उत्पन्न हुआ, उनके मन में थोड़ी अस्थिरता आने के लिए और एक भी कारण था कि उन्होंने सोचा कि मैंने इतनी तपस्या की, वैसे मेरे क्रोध को मेरे वश से कैसे मैं नहीं कर पाया, क्रोध कैसे मैं कर पड़ा, अचानक मैंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया और कैसे मैं अचानक मैंने शाप दे दिया इस शिकारी को। और भी वाल्मीकि मुनि के विचलित होने का कारण यह था कि वे सोच रहे थे कि ये मेरे मुख से जो श्लोक निकला, ये किस तरह की रचना है, ये बहुत सुंदर है, ये 8 अक्षर हर एक पाद में है, बड़े मधुर है, ये क्या चीज है, कैसे उत्पन्न हुई, इसमें कोई व्याकरण की कमी नहीं है, कोई अन्य दोष नहीं है इसमें। और साथ साथ वो सोच रहे थे कि जब कोई रचना होती है तो अ से होती है या श्री से होती है, क्योंकि इनसे मांगल्य का आवाहन होता है। परंतु वाल्मीकि मुनि का ये श्लोक जो है, इसकी शुरुआत मां से हुई, मां मतलब नहीं, तो मां या ना ये अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि हम किसी चीज को नकारते हैं या नहीं कहते हैं तो मां या ना कहते हैं। तो वाल्मीकि मुनि सोचने लगे कि मेरे मुख से मंगल का आह्वान होना चाहिए था, ये अमंगल कैसे मेरे मुख से निकला, मां निषाद। तो इसलिए वाल्मीकि मुनि बड़े चिंता में पड़ गए कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और वापस जब तमसा नदी के तट से अपने आश्रम में लौटते जा रहे थे, यही बात उनके मन में घूमती जा रही थी। अपने शिष्यों के बीच में फिर से बैठे और व्याख्या कर रहे थे अनेक विषयों के ऊपर, परंतु मुख से कुछ निकल रहा था, मन में वही विचार था कि उस क्रूर शिकारी ने कैसे उस बेचारे पक्षी की हत्या कर ली। और ऐसे विचार करते करते अचानक वहां पे एक ऐसे विशेष अतिथि आए, जिनको देखकर न केवल वाल्मीकि मुनि के शिष्य, परंतु स्वयं वाल्मीकि मुनि भी चकाचौंध रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो वो कौन थे विशेष अतिथि जो वहां आए थे? वो थे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के आने के बाद क्या घटना हुई, ब्रह्मा जी और वाल्मीकि मुनि के बीच में क्या संवाद हुआ, और उसके बाद में कैसे वाल्मीकि रामायण की रचना हुई, और उसके भी आगे की घटनाओं का वर्णन हम कल सुनाएंगे, क्योंकि आज का समय अब हो चुका है। आपको पुनः हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर पधारे हैं, इतने श्रद्धा से भक्ति भावना से आपने इस कथा को सुना है, जिससे कि हमें दो शब्द कहने के लिए थोड़ी बहुत प्रेरणा भी मिली है। जब श्रोतागण अच्छे होते हैं तो वक्ता को भी बोलने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो आप सबका हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं, साथ साथ उन सारे भक्तों का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने ये सुंदर व्यवस्था की है हम सब के लिए, ताकि हम सब राम कथा का पूरा लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।